तो उसके बाद लोगों ने, वो तो एक पैगाम लेकर आए, लोगों को एक किया। ये जो लोग कहते हैं ना कि नहीं दीन की तरफ ना जाओ, ये तो इन लोगों को बांट देता है, ग्रो ग्रो कर देता है, काट देता है। और अगर आपने इत्तेहाद इत्तेफाक से रहना है तो आपको इनकी बात को रद्द करना पड़ेगा, आपको इन दीन की तरफ नहीं जाएं आप, ये कहते हैं। हालांकि रसूलों ने एक पैगाम दिया, उन्हें तो जोड़ा उम्मतों को। जब एक ही पैगाम थ्रू आउट एक चला आ रहा है तो सबको तो जुड़ जाना चाहिए था, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हुआ? फतकत्तहु अमरहुम बैनहुम जुबरा, जुबर जो है ना लोहे के टुकड़े को कहते हैं। तो लोगों ने क्या किया बाद में, तकत्ताऊ, एक होता है कताऊ, एक कत्ताऊ, बहुत इसमें शिद्दत है, टुकड़े टुकड़े करके रख दिया, काट के रख दिया अमराहुम अपना मामला, यानी अपना दीन, बैनहुम आपस में, जुबुरा टुकड़े टुकड़े करना, यानी फिरके फिरके बन गए। वो तो एक उम्मत अल्लाह ताला ने बनाई थी सारे पैगंबरों को, लोगों ने ही काट दिया। नबियों ने लोगों को जोड़ने की कोशिश की, लोगों ने दीन के फिरके फिरके कर दिया। आप देख लें, कोई ईसाई बन गया, कोई यहूदी बन गया, कोई कोई किसी कोई, बाकी तो उम्मतें खत्म ही हो गई जिन्होंने, जाहिर है नबियों की बात को ही नहीं सुना। तो हर दौर में ये फिरके बनते रहे, ग्रो बनते रहे, और फिर आपस में दुश्मनियां, फिर ये आपस में लड़ाइयां। आपको पता है हजरत उमर के दौर में क्यों बाज ईसाई ममलिकतें क्यों उनके अंडर आने को प्रेफर करती थी? क्योंकि ईसाइयों के अंदर जो आपस के अंदर फिरके हैं, तो ये एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते थे, दूसरे को अपना अपने फिरके के मुताबिक चलने नहीं देते थे, उसकी आजादी उसको नहीं थी। तो वो कहते थे मुसलमान कम से कम आ जाएंगे तो हमें एटलीस्ट अपने जो भी हमारा फिरका, जो भी हमारे दीनी मामलात हैं, वो तो हम आजादी से कर लेंगे, जबकि उनके अपने नहीं करने देते थे। इतने ज्यादा आपस के अंदर झगड़े और दुश्मनियां, तो ये लोग जो है टुकड़े टुकड़े करके, और कुल्लू हिज़्बिन बिमा लदैहिम फरिहून, हर जो ग्रोह है ना, जो भी जिसने अपना टुकड़ा लिया, वो जो उसके पास है उससे खुश है। और कोई खुश है? जो यहूदी, वो कहते हैं हम ठीक है, हम उसके ऊपर खुश हैं क्योंकि हम ठीक हैं, हम ही सबसे ठीक हैं, हम तो चुने में। जो ईसाई कहते हैं, वो कहते हैं हमसे ज्यादा तो कोई हक पे ही नहीं, हम ही सबसे ठीक है, उस पे खुश हैं वो। मुसलमानों के अंदर आज देखें, मुसलमानों में भी जितने जितने ग्रो ग्रो किए हैं, सब अपने अपने जो टुकड़ा उन्होंने लिया ना, समझ लें एक बड़ा टुकड़ा था, आप एक कमीज समझ लें, कोई उसका बाजू पकड़ के ले गया, कोई उसकी कंधे पकड़ के ले गया, कोई नीचे से घेरा पकड़ के ले गया, वो सब अपने अपना समझ रहे हैं, हम कंप्लीट है और हम बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं, हमारा ही सबसे सही है। तो आज मुसलमानों के अंदर जो ग्रो बंदियां हो गई, तो हर एक ने क्या सोचना शुरू कर दिया, मैं ही सबसे सही हूँ। छोटे छोटे अपने अपने दायरे बना लिए, इस्लाम के दायरे में आने को तैयार नहीं, बस अपने अपने दायरे में खुश है। अगर कहे ना आप कौन है, आप अगर जवाब दें मुस्लिम, तो कहते हैं ये क्या बात हुई मुस्लिम, आप इमामों को नहीं मानते, अपने इमाम का बताएं, आपकी यानी मुस्लिम पहचान आपकी सही नहीं है। हालांकि सब पैगंबरों ने एक मुस्लिम ही पहचान दी, इस्लाम ही दिया अपनी कौमों को, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और अल्लाह ताला ने हमारा नाम मुस्लिम रखा, आप पढ़ चुके हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई तैयार नहीं मानने को, कहते नहीं अपना मसलक ही नाम बताओ हमें। और नाम जहां तक रखना है, नाम रखने में कोई हर्ज नहीं, अगर किसी ने नाम रख लिया चलो यहां तक तो फिर भी ठीक हो सकता है। जैसे कोई है सिंधी है, कोई बलोची है, वो कहता मैं पंजाबी हूँ, वो कहता मैं उर्दू बोलने वाला हूं, तो हर एक ने अपने अपने को नाम रख लिया, वो उनकी पहचान हो गई। लेकिन प्रॉब्लम यहां होता है जब सिंधी कहे कि मैं ही ठीक हूं और आप सारे गलत, और मैं आपको बर्दाश्त नहीं कर सकता, और आपस में लड़ाइयां, और आपस के अंदर रहे एक दूसरे के साथ दिल फटे हुए, तब प्रॉब्लम आता है, तब वो वाली बात है जिसको असबियत कहते हैं, ग्रो बंदी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि असबियत किसको कहते हैं, तो फरमाया कि तू जुल्म पे भी अपनी पार्टी या अपनी कौम की हिमायत करे, ये है असबियत, फिरकावारियत, कि बस हम जिस फिरके से है ना वो सही है, चाहे अब आप अपने आप को हनफी कहें, शाफी कहें, मालिकी कहें, जो भी कहें, कोई मसला नहीं। यहां तक कोई मसला नहीं है, मसला आगे शुरू होता है कि जिस वक्त हर कोई अपनी पहचान बना के कहे कि हम ही सही हैं और हमारे अलावा सारे जो है ना वो बिल्कुल ही गलत। जबकि इमामों ने क्या कहा, जिन इमामों के पीछे ये चलते हैं, इमाम अबू हनीफा ने कहा कि जब मेरी बात के आगे अगर सही हदीस आ जाए तो मेरी बात को दीवार पे दे मारना, और मेरा मजहब वही है जो सही हदीस है। इमाम मालिक ने क्या फरमाया कि मैं इंसान हूं, मेरी बात गलत हो सकती है और किसी की भी बात गलत हो सकती है सिवाय इसके, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की तरफ इशारा करके फरमाया, सिवाय इनके हर एक की बात गलत हो सकती है, ये इमाम मालिक फरमा रहे। इमाम अहमद बिन हम्बल क्या फरमाते हैं कि ना मेरी तकलीद करो, ना मालिक की, ना शाफी की, ना औजाई की, ना सूरी की, बल्कि तुम भी वहां से दीन लो जहां से उन्होंने लिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। इसके बावजूद आज क्या हाल है कि सही हदीस भी अगर कहते नहीं हमारे इमाम ने ये कहा, हम तो अपने इमाम की मानेंगे, अब दिखा रहे हैं कि देखिए ये हदीस है, ये सही हदीस है, नहीं कुरान हदीस को पीछे कर, क्योंकि हमारे इमाम की बात इतनी बड़ी है। ये है फिरका वारियत, ये है ग्रोह बंदियां। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था दूसरी कौमों के तो कितने फिरके हुए, किसी के 71 हुए, किसी ईसाइयों के 72 हुए, फरमाया मेरी उम्मत के 73 फिरके हो जाएंगे और सब जहन्नमी होंगे सिवाय उसके जो मेरे और मेरे सहाबा के रास्ते पे। अब वो अपना नाम कोई भी रख ले, चाहे हनफी रख ले, शाफी रख ले, कोई भी रख ले अपना नाम, लेकिन अगर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा के रास्ते पे है तो तब वो इस ग्रोह में से है, वरना नहीं। चाहे उसका नाम कोई भी हो, चाहे हम अपने आप को कहें सुन्नी, सुन्नी है हम लेकिन सुन्नत पे ही नहीं चल रहे, तो क्या अपना आपको सुन्नी कहते हैं, ये सिर्फ बोलने से थोड़ी हो जाता है। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को पकड़ेगा और सहाबा के तरीके को पकड़ेगा उसके ऊपर चलेगा वो इस ग्रोह में से होगा, चाहे वो कोई नाम का भी है। तो ये हम बात को समझें कि हमने नबी रसूलुल्लाह और आपके सहाबा के तरीके को पकड़ना है, ये नहीं है कि कोई बात नहीं उनका तरीका कुछ भी हो इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो इस तरीके पे चलूंगी। तो लोगों ने इस तरह से करके टुकड़े टुकड़े कर दिया दीन को। तो ये जो टुकड़े टुकड़े करना है इसके दो माने हैं, एक माना तो ये है कि दीन तो एक था ना, एक पैकेज था, एक पैकेज है इसके अंदर ये पूरा, जैसे मसलन आप अपनी किताब ले लें, पूरा पैकेज है, कुरान है, हदीस है, पूरा एक पैकेज है, ठीक है। लोगों ने टुकड़े टुकड़े कैसे किया, एक मतलब ये है कि उसमें से जिस जो अपना दिल करा ना उसको मान लिया और जो मुश्किल लगा उसको छोड़ दिया, ये है दीन को टुकड़े टुकड़े करना, जो यहूदियों ने भी किया। अफतुमिनुना बिबादिल किताबी वतकफुरुना बिबाद, अल्लाह ताला ने फरमाया तुम किताब के बाज हिस्से पे ईमान लाते हो बाज उसे कुफर करते हो कि हम नहीं इसके ऊपर चल सकते, तो ये उसका कुफर करना, उसको छोड़ दिया। और दूसरा माना ये है जो हमने अभी बात की कि आपस में एक मिल्लत थे, एक मिल्लत थी, एक उम्मत थी, एक दीन था, लेकिन कोई यहूदी बन बैठा, कोई ईसाई बन बैठा, कोई कुछ बन बैठा, ग्रोह बंदियां बना ली, और आज देखें यहूदी अपने उसके ऊपर खुश हैं, ईसाई अपने ऊपर खुश हैं, आप देख लें जितने हमारे यहाँ भी जितने फिरके हैं सब अपने अपने ऊपर खुश हैं, और कोई ये नहीं देखने को तैयार कि सही क्या है, बस ये चूंकि मेरा है फिरका इसलिए बस यही सही है, चूंकि ये मेरा फिरका मैं इसी में पैदा हुआ हूं इसलिए यही सही है, कुछ उसके बाद कुछ तरद्दुद ही नहीं करना कि वो देख भी लें कि क्या ठीक क्या है। तो देख लें आप जो बिदतों में पड़े हुए हैं वो उसके ऊपर ही खुश हैं, वो कहते हैं इसमें क्या हर्ज है, जो जहालत में है वो उसमें खुश है। और इसकी मिसाल तो ऐसे ही है ना कि जैसे कोई एक ट्रेन पे बैठ जाए और गलत ट्रेन पे बैठ गया, उसने टिकट भी ले लिया गलत ट्रेन पे बैठे, अब वो ट्रेन तेजी से चल रही है और वो खुश है और कहता है चलो बहुत अच्छी ट्रेन तेज चल रही है, हालांकि वो ट्रेन उसकी मंजिल की तरफ ही नहीं जा रही, वो तो कहीं और जा रही है। तो जितना देर वो उसमें बैठा रहेगा, मंजिल से दूर होता रहेगा, करीब नहीं होगा। और ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। इंसान खुश है कि मेरी तंजीम या मेरा मसलक या मेरा फिरका, बस वो ही बेस्ट है। देख तो लो कि सही ट्रेन पे भी हो कि नहीं, इसकी किसी को परवाह नहीं। और इस तरह आदमी ये जरूर कहूंगी कि ना सिर्फ ये जो टुकड़े टुकड़े करना है ना, ये दीन के मामले में तो आज है ही, अल्लाह माफ करे हम सबको, कि सियासत के मामले में इस तरह लोग टुकड़े टुकड़े हो गए। इतनी असबियत है, इतनी ज्यादा है कि बस जो हमारी पार्टी का है बस वो ही ठीक है, चाहे वो स्याह करे सफेद करे, जुल्म करे करप्शन करे, जो मर्जी करे, बस वो ही ठीक है, क्योंकि मैं इस पार्टी से हूं। मुझे इससे भी आपको समझ आएगी कि मजहबी फिरकावारियत क्या होती है, इतनी शिद्दत इसमें। मेरा पार्टी का बंदा ना, इसको 100 खून माफ है, दूसरी पार्टी का तो फिर उसका तो इतना सा कंकर भी हमें बहुत बड़ा नजर आता है, अपने दफा 100 खून माफ। तो ये होती है असबियत, कि इंसान अपने बस ग्रो को कहे ये ठीक है, चाहे उसमें कितनी गलतियां, चाहे आपको समझ आ रही है कि ये सुन्नत से हटे में, चाहे आपको समझ आ रही है कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं था, लेकिन फिर भी हमने तो इस पे ही चलना। फजरहुम फी अमरतिहिम हत्ता हीन, तो अल्लाह ताला ने फरमाया ठीक है, फिर इनको इनकी गफलत में, गमरा, गमरा कहते हैं पानी का किसी को ढांप लेना, तो ये गफलत भी ऐसी होती है कि इंसान इसमें डूब जाता है, तो इनको अपनी गफलत में छोड़ दो एक वक्त तक, जब तक अल्लाह ही इनका फैसला ना कर ले। क्योंकि हर एक जब खुश है इतना, उनसे दलायल मांगो तो इतने दलीलें देते हैं, तो फिर ठीक है, इनको अपने उसमें कुछ समझना तो है नहीं। अच्छा सबूना अन्नमा नुबिदुम बिही मिम मालिम व बनीन, क्या वो ये समझते हैं कि हमने जो इनको माल और बेटे दिए हैं तो हम इनकी मदद कर रहे हैं, नुसारे लहुम फिल खैरात, हम इनके साथ जल्दी कर रहे हैं भलाइयां देने में। इंसान की हमेशा से ये बड़ी खुशफहमी रही है कि वो ये समझता है कि उसके पास अगर पैसा है और बेटे आ गए, उसके बेटे बड़े लायक हो गए, आज तो सिर्फ बेटे नहीं उलाते बड़ी लायक हो गई हैं, बड़े अच्छे करियर बन गए हैं, तो बस अल्लाह ताला ने तो बड़ा ही मेरे ऊपर खास ही रहमत की भी है, और बड़ा मेरे ऊपर फजल है अल्लाह का, और मैं तो बस बड़ा नेक ही हूंगा जाहिर है, जो अल्लाह ताला ने इतना मुझे दिया है। और फिर अपने दीन ईमान से भी जरा इंसान लेजी हो जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि एवरीथिंग इज गुड, मेरा मुझे सब कुछ मिला हुआ है, बल्कि दुआएं मांगने की भी मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे तो सभी कुछ मिला हुआ। वो इसको भी समझता है कि मैं अल्लाह ताला का बड़ा लाडला हूं, मैं अल्लाह का प्यारा ही हूंगा जो मुझे मिले हैं ना, और वो देखो ये फलां मुसीबतों में और फलां इसके अंदर, तो जाहिर है उन्होंने तो कुछ गलत ही किया होगा, इसलिए हम ठीक ही है ना, तो फिर हमें इतना मिला है, और वो फलाना है वो बेचारा, जरूर इसने कोई गुनाह ही किया होगा, जैसे हमने बात की थी अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में, लोगों ने ऐसे कहा था ना। तो ना तो दुनिया की नेमतें मिल जाना इंसान का अल्लाह के हाँ किसी मकाम या किसी दर्जे पे होने की अलामत है, ना मुसीबतों का आना इस बात की अलामत है कि इंसान पता नहीं अल्लाह ताला के हाँ बहुत ही मगदूब है या बड़ा गुनाहगार है या अल्लाह ताला का बड़ा, अल्लाह को इससे बिल्कुल मोहब्बत नहीं है, ऐसे कुछ भी चीज नहीं। ये दुनिया तो क्राइटेरिया है ही नहीं। कतादा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तुम इंसानों को माल और औलाद से ना परखो, बल्कि इंसान की कसौटी ईमान और नेक अमल है, उससे परखो तुम कि कितना ईमान वाला है, कितनी नेकियां करने वाला। ये नहीं कि उसके पास पैसा इतना है, बड़ा जी देखो जी वाकई बड़ा कोई अच्छे ही होंगे, कुछ तो करते ही होंगे जो इनको इतना मिला हुआ। और वो खास तौर पे वो इंसान खुद बहुत अपने आप को समझने लगता है कि दीन में भी मैं बड़ा अच्छा हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ताला ने तुम्हारे अखलाक भी तुम में इसी तरह तकसीम किए जिस तरह रोजियां तकसीम फरमाई हैं। अल्लाह ताला दुनिया उसको भी देता है जिसे मोहब्बत रखता है, और उसको भी देता है जिसे मोहब्बत नहीं करता। फिरौन को दी भी थी ना, कारून को दी भी थी ना, नमरूद को दी भी थी ना। हाँ दीन सिर्फ उसी को देता है जिससे मोहब्बत करता है, पूरी मोहब्बत रखता हो जिससे, बस जिसे अल्लाह दीन दे दे समझो कि अल्लाह ताला उससे मोहब्बत रखता है। तो खुशखबरी सुन लें कि अगर आपको दीन मिल जाता है ना, तो समझ लें अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है जो आपको दीन दिया। अल्लाह अकबर। माल और बेटों के ऊपर ना कोई गलत फहमी का शिकार हो जाए, या सब ना क्या वो ये समझते हैं हम इनके साथ जल्दी कर रहे हैं इनको भलाइयां देने में, कि इनको सब ये हम इनसे बड़े राजी हैं, इनको नेमतों से माला माल कर रहे हैं। बल्ला यशुरून, इनको समझ ही नहीं है, इनको इस चीज का शऊर ही नहीं है। और हम भी आजकल दुनिया में पैसे को देखते हैं ना, तो बस हम समझते हैं उसके हर चीज इसकी ठीक है, इसका दीन भी ठीक है, इसके दुनिया तो इसकी वाकई बहुत ही ठीक होगी जो ये इसको इतना पैसा मिल गया, इसकी सारी चीज ठीक है। तो किसी की खुशहाली को अल्लाह की रजा इसका सिंबल, इसका साइन ना समझे, ठीक है? आपको नहीं पता कौन से लोग जो रुले पड़े हों, जो गमों में हों, जो मुसीबतों में अल्लाह के कितने प्यारे हों, और वो भी कोई अल्लाह ताला की मोहब्बत की अलामत नहीं है, दोनों ही नहीं है, ना माल का मिलना ना मुसीबतों का होना। अब मुसीबतों वाले भी ये ना समझे कि पता नहीं मुसीबत मेरे लिए इसीलिए आई हुई है क्योंकि अल्लाह ताला मुझसे बड़ी मोहब्बत करता है, नहीं, हमें नहीं पता। अल्लाह ताला दे के भी आजमाता है, लेके भी आजमाता है, दोनों तरह से आजमाता है। जो उसको खुशहाली दी गई उसमें उसकी आजमाइश, जैसे कुछ ले लिया उसमें उसकी आजमाइश। इन अल्लादीना हम मिन खशियत रब्बी मुशफिकून। अब ना कुछ लोगों की अलामात बयान की गई, कुछ लोगों की सिफात बयान की गई आयत 57 से 61 तक। ये हैं लोग जो साबिकून हैं, साबिकून, हम सब साबिकून बनना चाहते हैं ना, आगे अल्लाह ताला के यहाँ सबकत ले जाने वाले। आपने सूरह इंशाल्लाह वाकया में पढ़ेंगे कि साबिकून कौन होते हैं, जो सबसे हाईएस्ट लेवल पे होने वाले, उनकी चंद एक खूबियां अल्लाह ताला ने बताई हैं यहाँ पे। इन्नल्लज़ीना हुम मिन खशियति रब्बिहिम मुशफिकून, बेशक वो लोग जो अपने रब से की हैबत से डरते हैं। अब खशियत कैसी होती है कि किसी की अजमत की वजह से जो खौफ हो, जैसे कोई बड़े बुजुर्ग होते हैं, आप तो खैर बुजुर्गों की कहाँ कोई रोब ना किसी का कोई डर ही नहीं रहा, लेकिन पहले वक्तों के अंदर होता था कि कोई बुजुर्ग आते थे तो घर में खामोशी हो जाती थी और एकदम सब अलर्ट हो जाते थे कि फलां है, और उनकी मजलिस में बैठे में तो पता चलता था एक तमीज के साथ, एक उसके साथ। अब वो नहीं कि वो कोई खौफनाक चीज है जिनसे डर रहे हैं, लेकिन बस उनकी इज्जत इतनी होती थी, ठीक है, उनकी अजमत। तो अल्लाह ताला की अजमत की वजह से कि अल्लाह कौन है, अल्लाह ताला कितनी बड़ी हस्ती है, अल्लाह ताला जहानों का रब है, वो जो अला कुल्ली शहीन कदीर है, सब पावर जिसके हाथ में, छोटे से अफसर के पास या एक पुलिस वाले के पास क्या ताकत होगी, हमारे जैसा इंसान होता है, उसकी रोब हमारे दिल के अंदर इतना होता है कि हम डरते फिरते हैं। कि वो शक्ल से कोई खौफनाक नहीं होता, लेकिन हम कितना डर रहे होते हैं सिर्फ उसकी एक हैबत से ना। तो जो कायनात का मालिक हो, कायनात की हर चीज उसके हुक्म से चल रही है, उसके कौन कहने से कुछ भी हो सकता हो, उसकी कितनी हैबत होनी चाहिए दिल में। तो वो उस हैबत की वजह से डरने वाले होते हैं। अल्लाह ताला को ये बड़ा ही पसंद है कि बंदा उसकी नाराजगी से डर डर के चले अपनी जिंदगी में। उसके लिए जन्नतान होंगी, दो जन्नतें होंगी सूरह रहमान में अल्लाह ताला ने फरमाया, दो जन्नतें उसको मिलेंगी। और सूरह नाजियात में भी अल्लाह ताला ने फरमाया वो लोग जो अल्लाह से डरने वाले हैं और अपनी ख्वाहिश नफ्स को कंट्रोल करने वाले हैं, उनके लिए अल्लाह ने जन्नत रखी है। तो अल्लाह से डरना, ये जो डर है ना अल्लाह का, ये एक दौलत है, अगर आपको मिल जाए दौलत है, इसको कदर की नजर से देखें। बाद लोग तो खैर डरना ही नहीं चाहते ना, वो कहते नहीं हो ना, डराओ और ना हमने डरना है। हालांकि आप देखेंगे इन आयतों के अंदर 3 दफा इस चीज की बात आई है, डर की, अल्लाह के डर की। क्योंकि देखें जब इंसान वो वाला, मैं ये नहीं कह रही कोई खौफनाक चीज वाला डर जो होता है वो वाला नहीं, लेकिन इस चीज का डर होना कि मेरा अल्लाह मुझसे नाराज ना हो जाए। देखें जब ये वाला डर लोगों से होता है तो फिर क्या होता है, इंसान कहता है जब लोगों का डर आपके दिल में होता है तो इंसान क्या कहता है, अब लोग खौफनाक थोड़ी है, या कोई आपको मारने थोड़ी आ रहे हैं, लेकिन बस उनका एक डर होता है हमें, तो फिर वो रोब है ना दिल के अंदर, उनका एक रोब हमारे, उनकी एक हैबत हमारे अंदर होती है कि बस अगर ये नाराज हो गए तो फिर क्या होगा, फिर मेरे से कोई ऐसी है। हाँ देखें, दुनिया भी तो फिर चलानी है ना, दीन तो अपनी जगह पे, दुनिया में भी तो रहना है ना हमने, तो उनको खुश करने के लिए अब उल्टा सीधा कुछ भी करना पड़े करने बैठ जाते, ये नाराज ना हो जाए बस। तो लोगों का डर हमें इतना कुछ करा देता है, तो अल्लाह का डर हो जिसके अंदर, फिर वो क्या ना करेगा, वो सोचे। अल्लाह हु अकबर, फिर वो गुनाहों से क्यों ना बचेगा, अल्लाह का डर जिसके अंदर आ जाए। मैंने आपको कहा ना, अगर आपके अंदर कभी जब आप गुनाह करने लगे अल्लाह का डर आ जाता है ना, तो बस फिर समझ लें कि आप भी, आपके अंदर ये क्वालिटी आ गई साबिकून की, फिर आपको मुबारक है। क्या है? तो ये एक ऐसी चीज है कि अल्लाह ताला कयामत के दिन, हदीस में आता है, अल्लाह ताला दो अमन और दो खौफ जमा नहीं करेगा, यानी जो दुनिया में अल्लाह से डर के रहा, अल्लाह ताला वहां पे उसको बेखौफ कर देगा, उसको कोई डर ही नहीं होगा, अल्लाह ताला उसको इतनी नेमतें दे देगा, इतना कुछ उसके सामने दिखाएगा, जन्नत उसको दिखा दी जाएगी, उसको नहीं कोई डर रहेगा, वो नहीं डरेगा, वो परेशान नहीं होगा, जबकि सारी दुनिया उस वक्त परेशान होगी। और जो इस दुनिया में बेखौफ रहा, अल्लाह ताला वहां उसको खौफ जदा करेगा, कि वहां उसको ये खौफ ही खौफ होगा, जब जहन्नुम देखेगा, जब अपने अमाल नामे देखेगा, जब अब हिसाब किताब का वक्त शुरू होने लगेगा, उसके ऊपर खौफ ही खौफ तारी है, तभी तो पसीने छूटे होंगे। दो खौफ और दो अमन नहीं जमा करता, या यहाँ अमन ले लो और बेखौफ हो जाओ, या वहां बेखौफ हो जाओ, एक को चूज कर लें आप, कहाँ डरना है हमने, या वहां डर डर के पागल हो रहे होंगे कि सारे शराबूर हैं पसीनों के साथ और कांप रहे होंगे, और क्या हालत होगी जब जहन्नुम को दिखाया जाएगा और अपने अमलों के साथ, और यहाँ पे डर सकते हैं कि डर डर के जिंदगी इस तरह गुजारेंगे, कहीं मुझसे अल्लाह की नाफरमानी ना हो जाए, कहीं मुझसे ऐसी चीज कोई ना हो जाए कि जो अल्लाह ताला जिससे नाराज हो जाए। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था, यही बात पूछी थी कि या रसूल अल्लाह, ये किन के बारे में है, ये डर की बात किन के बारे में है? अब हम सोचते हैं डरना तो उनको चाहिए जो को गलत करते हैं, हम तो बड़े नेक अमल करते हैं, मैं तो बड़ी नेक हूं, मैं किस बात पे डर। तो आयशा रजी अल्लाह तआला ने आपसे वसल्लम से पूछा कि ये वो लोग हैं जो जिना करते हैं, चोरी करते हैं, शराबखोरी करते हैं, वो हैं ये लोग, लेकिन इनके दिल में खौफे इलाही होता है, वो डरते हैं, डरते रहे हों कि भाई आए मेरे से चोरी हो गई है, शराब पी है मैंने, ये है। आपसे वसल्लम ने फरमाया, सिद्दीक की बेटी, ये वो नहीं है, बल्कि ये तो वो लोग हैं जो नमाजें पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, सदके करते हैं, लेकिन कबूल ना होने से डरते हैं, यही हैं जो नेकियों में सबकत करते हैं, साबिकून यही हैं। क्यों इन्हें डर डर के रहते हैं, अल्लाह ये ना हो कि मेरा कोई अमल कबूलियत से रह जाए। हजरत हसन बसरी फरमाते हैं ना, ये वो लोग हैं जो नेक अमल करके इतना डरते हैं जो तुम गुनाह करके नहीं डरते, गुनाह करके भी इंसान इतना उसके अंदर डर नहीं आए, ये नेक लोग ऐसे हैं कि नेकियां करके डरते हैं, इनको डर किस बात का होता है, अल्लाह पता नहीं कबूल हुआ कि नहीं, हाय अल्लाह पता नहीं सही से हुआ कि नहीं, हाय कहीं रिहाकारी ना हो गई, हाय कहीं तकबर ना आ गया, हाय कहीं एहसान ना जिता दिया, हाय कहीं शिर्क की आमेजिश ना आ गई हो, हाय कहीं बिदत ना हो गई हो, कितनी चीजें हैं जो कि अमल को बर्बाद कर देती हैं ना, अमल को ना मकबूल कर देती हैं। अल्लाह ताला है उसकी मर्जी, जिस अमल को चाहे कबूल करे, जिसको चाहे ना कबूल करे, उसने बता दिया मैं ये वाले अमल जो है ना ये नहीं कबूल करूंगा, सिर्फ इखलास के साथ किया हुआ अमल कबूल करूंगा। उनको ये डर लगता है कहीं ये ना हो हमारे इखलास में कहीं कमी रह गई। आप देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मैं सोचती हूँ हमारे जैसी तो क्या कोई चीज होगी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसे इंसान, अल्लाह के खलील, वो काबा बना रहे हैं, अल्लाह के हुक्म पे बना रहे हैं, अल्लाह का घर बना रहे हैं, इतनी बड़ी नेकी से बड़ी क्या नेकी की बात हो सकती है, अल्लाह ताला का घर बनाना, वो काबा, और फिर कह रहे हैं रब्बना तकब्बल मिन्ना, ए अल्लाह कबूल कर लेना हमसे। तो वो तो वो लोग तो इस बात से डरते थे कहीं ये ना हो कि रद्द हो जाए, हमें इस चीज की फिक्र क्यों नहीं रहती? हम क्यों इतने खुश हो जाते हैं, बस मैंने ये कर लिया और मैं तो ये करती हूं। इतनी बड़ाइयां करने की क्या जरूरत है? आपको पता चल गया, कबूल हो गया, पता चल गया। नहीं पता चला तो फिर किस बात पे खुश हो रहे हैं, किस बात पे डींगे मार रहे हैं, शेखियां किस बात की हैं? मैं तो ऐसे करती हूं, मैं तो तहज्जुदें पढ़ती हूं, मैं तो ये करती हूं, मैंने तो ऐसे कभी नहीं किया, मैंने तो वो चीज कभी नहीं की, मैंने तो नहीं कभी इस तरह से करा, मैं तो ऐसे कर, क्या किस चीज के बढ़ाई? आपको तो यही नहीं अभी पता कि ये जो आप किसी गुनाह से बचने की बात कर रही हैं, या जो कोई नेकी का बड़ा जबरदस्त आपने काम कर दिया है, हमने ये मस्जिद बनवाई है, हमने ये अस्पताल बनवाया, हमने ऐसे किया, मैं हमसायों के साथ ऐसे करती हूँ, मैं उसके साथ ऐसे करती हूँ, मैं तो इतना देती हूँ, मैं तो इतना खर्च, ये आपको पता भी है कि भूल भी हो रहा है कि नहीं? इसके बावजूद हम कितने आराम से हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। अल्लाह अकबर। हालांकि ये कयामत के दिन रद्द हो गया तो इंसान खाली हाथ हो जाएगा, तो फिर फूले नहीं समाने होने की क्या बात है? आप सोच लें कि हजरत उमर जैसे इंसान भी कितनी नेकियां करके, अल्लाह अकबर, अशरा मुबशरा होके कैसे वो अपनी वफात के वक्त अपना सर जमीन के अंदर रोल रहे हैं और कह रहे हैं कि ए उमर तू हलाक हो गया अगर तेरे रब ने तुझे माफ ना किया। इतना डर उनको थी, तो ये नहीं था मैंने तो ये भी नहीं की कि मैंने तो हर साल हज किए, 10 तो हज हो ही गए हैं मेरे, और मेरे तो इतने उम्रे हो गए, और मेरी तो इतनी नमाजें हैं, और मैंने तो कभी कोई जुल्म भी नहीं किया। कितनी नेकियां उनके पास थी फिर भी डरते थे, तो ऑलवेज डरते रहे। हसन हसन बसरी फरमाते ना, मोमिन इताद करते हुए डरता रहता है और मुनाफिक गुनाह करके भी बेखौफ रहता है। वो गुनाह भी कर ले ना, वो कोई आ तो हमने कौन सा इतना बड़ा कोई गुनाह कर दिया, सारे ही करते हैं, उन्हें उसको नहीं कोई परवाह। और ये मोमिन की निशानी है कि वो नेकी करके भी डरता रहता है, वो नेकी करके भी रोता है, अल्लाह पता नहीं कबूल हुई कि नहीं, अल्लाह मेरी तारीफें ना करो, पता नहीं कबूल हुई कि नहीं, अगर ना कबूल हुई तो उस दिन क्या करूंगा? क्योंकि इंसान इसके से बड़ा खसारा किसका हो सकता है कि आप देखें, एक बंदा इस दुनिया में सोच रहा है मैं तो बड़ा अच्छा कर रहा हूं, मैं तो बड़ा अच्छा, वहां पर पता चले कि कुछ भी नहीं कबूल हुआ, सब अल्लाह ताला ने रिजेक्ट कर दिया, अल्लाह माफ कर दे हमें, अल्लाह तू माफ कर देना, तो वो उसके तो पल्ले कुछ भी नहीं रह गया। अल्लाह अकबर। तो इसलिए हमेशा ऐसा किया करें कि कभी अपनी नेकी को ना बहुत बड़ा ना समझा करें, बल्कि अपनी नेकी के मामले में हमेशा अपने से आगे वालों को देखते रहे, उसने कितना अच्छा कर दिया, उसने कितना अच्छा कर दिया, मैंने वहां तक पहुंचा। दुनिया के मामले में नीचे की तरफ को देखें, दीन में अगर आप चाहते हैं कि आप तरक्की करें, कभी ये ना कहें लो तो क्या हुआ मैं 5 नहीं नमाजें पढ़ती, 3 तो पढ़ती हूं ना, वो लोगों को देखो आजकल कोई भी नहीं पढ़ते हैं, और तो क्या हुआ मैंने अगर एक आध रोजा छोड़ भी दिया तो क्या फर्क पड़ गया, लोग तो आजकल रोजा रखते ही नहीं है। और देखें आप कहते हैं हिजाब करो हिजाब करो, लोग आजकल दुपट्टा भी नहीं ले रहे, मैं कम से कम दुपट्टा तो गले में डाल लेती हूँ। अगर आप अपने आप को कंपैरिजन ऑलवेज उनके साथ करते हैं जो आपसे कम है दीन में, तो आप कभी भी बढ़ नहीं सकेंगे। मैं कम से कम इतनी तो क्लास तो ले लेती हूँ ना, तो चलो मैं बैठ तो जाती ना, चलो नहीं टेस्ट देती, नहीं चलो मैं स्टूडेंट हूं, मैं बैठी तो रहती ना, क्यों? फलाने तो बैठते भी नहीं है, वो तो सुनते भी नहीं, क्यों आप अपने आप को तसल्ली देती हैं लीस्ट के साथ कंपेयर करके? आपका बच्चा आके घर पे आके आपको कहे कि अम्मा मेरा डी ग्रेड आ गया, सी ग्रेड आ गया, तो आप कहेंगे कितना बुरा तुमने ग्रेड लिया, तो कहे तो कोई बात नहीं पास तो हो गया ना, कई बच्चे तो फेल हो गए, तो आप खुश हो जाएंगी क्या? क्यों हम कंपेयर करते हैं अपने आप को हमेशा उनके साथ जो पीछे होते हैं? और दुनिया में तो कभी नहीं हम ऐसे कहते, क्या आप ये कहेंगे दुनिया में, आप ये कहेंगे मसलन है कि आपके दोस्त है उसने उसके हस्बैंड ने कोई बड़ा घर नहीं लिया और आपके हस्बैंड बड़ा घर ले रहे हैं, तो कभी आप अपने हस्बैंड को नहीं कहेंगी कि मेरी दोस्त ने तो बड़ा घर नहीं लिया, उसके हस्बैंड तो नहीं लेके दे रहे उसको, आप भी ना मुझे लेके दें, कभी भी नहीं कोई औरत कहेगी। मेरी दोस्त के तो उसने ईद पे अच्छे कपड़े नए कपड़े नहीं बनाए, तो मैंने भी नहीं बनाने, ये कभी नहीं हम दुनिया के मामले में कहते, दीन के मामले में जरूर कहते हैं। मेरी दोस्त तो कुछ भी नहीं पढ़ती, कम से कम मैं इतना तो पढ़ रही हूं। क्यों? अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हमें दीन में आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। तो डरते रहते हैं वो, नेकियां करते भी, नेकियां कर करके भी फिक्रमंद रहते हैं। गुनाह करना तो दूर की बात है, जो नेकी करके भी डरता रहे, सोचे कि उसका मकाम कितना फिर आगे है। गुनाह करते वक्त कितना डरता होगा, इससे सोच लें आप। वल्लदीना हुम भी आयाति रब्बिहिम युमिनून, और वो अपने रब की आयात के ऊपर ईमान लाते हैं, अल्लाह की आयात को मानते हैं उसके ऊपर। ये नहीं कहते ये आजकल नहीं चल सकता और ये तो एप्लीकेबल ही नहीं है और ये तो पुरानी बातें हो गई हैं। अल्लाहु अकबर। वल्लदीना हुम बिरब्बिहिम ला युशरिकून, और वो शिर्क नहीं करते। बाज लोग कहते हैं हम अल्लाह को तो मानते हैं लेकिन साथ साथ शिर्क भी करते हैं, जैसे सूरह यूसुफ में हम पढ़ चुके हैं। अल्लाह को भी मानते हैं, शिर्क भी करते हैं। यहाँ पे बता दिया गया वो अल्लाह की आयात पे ईमान रखते हैं और शिर्क नहीं करते। ईमान रखने का मतलब क्या है? दिल से मान लेना। आप जब दिल से किसी चीज को मान लेते हैं ना, तो फिर वो आपके अमल में ढलती है। आपने अगर दिल से मान लिया है ना कि ये दिन का वक्त है, तो आप उसी के मुताबिक फिर चलते हैं, काम करते हैं। आपने ये मान लिया ना कि बाहर बारिश है, तो आप छतरी लेके चलते हैं। आप जब किसी चीज को मान लेते हैं ना, तो उसके मुताबिक आपका अमल खुद ब खुद उसके मुताबिक मोल्ड होता है। आपने ये मान लिया ना, अगर ये सच्ची किताब है और उसमें हर चीज सच है, हक है, अल्लाह की तरफ से है, सच्चाई है, इसमें कोई बात गलत का तो शायबा भी नहीं, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर फर्क आएगा। लेकिन जब पता नहीं ऐसे ऐसे, पता नहीं देखेंगे करेंगे, इसका मतलब है कि अभी भी दिल डावा डोल है, मुजबजबीन है। मुजबजबीन बई नजाले की, तो मुनाफिकीन की अलामत है कि कभी इधर डोलते हैं कभी इधर। वो रब के साथ शिर्क भी नहीं करते, हर किस्म का शिर्क इसके अंदर आ गया। शिर्के खफी, शिर्के जली। शिर्के जली तो वो ही शिर्क है जो बाकी भी लोग करते हैं, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना। शिर्के खफी, रियाकारी, वो भी नहीं करते कि उसके लिए ये अमल कर रहे हो, उनको पता चल जाए हम कितने नेक हैं। फलां क्या कहेगा कि अच्छा ये इतनी नेक है तो ये फिर तहज्जुद नहीं पढ़ती तो इस वजह से मैं पढ़ लेती हूँ। फलां क्या कहेगा कि ये इतनी नेक है, अबाया नहीं पहनती तो चलो मैं अबाया पहन लेती हूँ, तो ये तो लोगों के लिए हो गया ना। फलां क्या कहेगा ये इतनी नेक है और ये लंबी लंबी नमाज नहीं पढ़ती तो मैं लंबी नमाज पढ़ने शुरू हो जाऊँ, ये सब रियाकारी है। वल्लदीना युतूना मा आतौ, और वो लोग जो देते हैं, जो कुछ वो देते हैं, जो भी माल उनके पास होता है, उसके अंदर से अल्लाह के रास्ते में निकालते हैं। वकुलूबुहुम वजिलतुन अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन। कुलूबुहुम वजिला, उनके दिल डरते रहते हैं, दे के भी डरते रहते हैं, अल्लाह के रास्ते में खर्च करके भी डरते रहते हैं। और किस बात से डरते हैं? अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन, कि उनको अपने रब की तरफ लौटना है। आए मुझे अपने अल्लाह के आगे खड़े होना है, मुझे उसको जवाब देना है, वो मेरे से पूछेगा, इस बात से वो कांपते हैं कि मैं कैसे खड़ी होंगी, मैं कैसे अल्लाह ताला का सामना करूंगी। अल्लाह अकबर। हजरत उस्मान को देखें, तबूक के मौके पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको खुशखबरी दे दी थी कि ऐ उस्मान, इसके बाद तुम जो भी करो बस जन्नत तुम्हारे लिए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि अब इसके बाद तो बस मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं, इसके बाद तो मैंने सब कुछ ही कर लिया, अब तो मुझे जन्नत की खुशखबरी मिल ही गई, अब कुछ करने की क्या जरूरत। अब सोचे ना, हमें जन्नत की खुशखबरी मिल जाए हम तो बिल्कुल ही रिलैक्स हो जाए, अभी तो नहीं मिली हुई तो हमारा हाल ये है। लेकिन वो फिर भी पढ़ने वाले थे आगे, वो सब कुछ करके भी डरते रहते थे, रोते थे। तो वो दे के और शिर्क ना करके और अल्लाह की आयत पे ईमान रख के फिर भी उनको ये खौफ था कि हमें जाना है, हमें पलटना है। पहले तो बात यह है कि ये याद किसको रहता है कि मुझे पलटना है, दिल का कांपना तो बात की बात है, याद किसको रहता है? पहले तो हमें याद ही नहीं रहता कि हमें पलटना। और ये नमाजें पढ़ने वाले हैं, आप देखिए मैंने ये जो हदीस आपको बताई है अम्मा आयशा की, ये वही है कि हाँ, नमाजें पढ़ने वाले, सदका करने वाले, रोजे रखने वाले, उनको डर लगता है फिर भी। तो फिर दौलत है ना, ये खौफ जो है ये एक दौलत है। अल्लाह अकबर, उलाइका युसारिउना फिल खैरात, यही लोग हैं जो नेकियों में जल्दी करने वाले हैं, वहुम लहा साबिकून, और यही वो लोग हैं जो सबकत ले जाने वाले। फिर वो क्यों नेकियों में जल्दी करते हैं? इसलिए कि उनको ये पता है हमने अल्लाह की तरफ वापस जाना है, हमें पता नहीं किस वक्त वापसी हो जाए, आज हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए। तो जब जिसको पता हो कि भाई मैंने किसी सफर पे निकलना है, शायद कल निकलना पड़ जाए, हमें पता नहीं परसों जाना पड़ता है, वो तो अपना सामान पैक करके रखता है ना। फिर इसी तरह ये लोग हैं कि ये जल्दी करते हैं, कोई नेकी रह ना जाए। क्यों? इसलिए कि कोई हमें जाना है ना अपने रब की तरफ, अन्ना हूं मिला और अभी राजा हूं, उनको ये यकीन है जाना है, तो तेजी करो। और हमें इसलिए कि यकीन नहीं है कि हमने जाना है, अभी तो हमारा काफी टाइम पड़ा है, जब बूढ़े होंगे तो जाएंगे ना, तो फिर हम इसलिए बड़े रिलैक्स हैं कि बूढ़े होके कर लेंगे मेरे ख्याल सारी नेकियां, अभी करने की क्या जरूरत, अभी भाग दौड़ की क्या जरूरत है, अभी तो दुनिया में बड़ी हमने भाग दौड़ करनी है, अब नेकियों में भाग दौड़ क्यों करें? वो जिस वक्त ना घुटने साथ दें, ना कमर साथ दें, ना आंखें साथ दें, कानों से कुछ सुनाई ना दिए दिया जाए, और कुछ पढ़ा ना जाए, और सजदा जमीन पे किया ना जाए, उस वक्त अब हमें होश आता है कि अब हम चलो थोड़ी सी नेकी कर लेते हैं, हमें वापस जाना है। वो ऐसे नहीं करते कि अपने बुढ़ापों का इंतजार करें, वो ऐसे नहीं करते कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तरसों कर लेंगे, बच्चे बड़े हो जाएंगे कर लेंगे, और बच्चों के स्कूल हैं, उसके बाद इनकी शादियां हो जाए तो कर लेंगे, उसके बाद इनके बच्चों को संभाल लेंगे तो उनके बच्चे बड़े हो जाएंगे तो तब कर लेंगे, कल 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 फिर ही डालते। यू सारे आऊं, जल्दी करते हैं, एज इफ के इनका टाइम जा रहा है, जल्दी करते हैं। जल्दी करना उनका ये शो करता है कि उनको कितनी ज्यादा फिक्र है अपनी आखरत की, कि वो कोई लम्हा वेस्ट नहीं करना चाहते, यहाँ पे रहते हुए वो इस जिंदगी को गनीमत जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिंदगी को गनीमत जानो मौत से पहले, तो वो जल्दी करते हैं, कल के हालात का क्या पता। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया हुआ है कि जो सेहत है इसको गनीमत जानो बीमारी से पहले, जवानी को गनीमत जानो बुढ़ापे से पहले। हमें ये सोच क्यों नहीं आती कि बुढ़ापा आ गया तो फिर तो किसी काम के काबिल नहीं रहेंगे, बीमारी आ गई तो फिर क्या होगा? अगर 90 साल की भी जिंदगी मिल गई लेकिन कल को बीमारी आ गई तो क्या होगा? और गारंटी जिंदगी की तो किसी को भी नहीं है, जल्दी क्यों नहीं करते? उनकी जिंदगी नजर आती है ऐसे कि बस आज का दिन शुरू किया, इसमें ये भी नेकी कर लूं, ये भी नेकी कर लूं, ये भी नेकी कर लूं। वो तेज दौड़ते हैं, वो ऐसे हैं जैसे एक दौड़ में आप सोचे ना, लोग भाग रहे हैं, वो भाग रहे हैं, लेकिन उनकी भाग दौड़ डिफरेंट है, और जो दुनिया के पीछे दौड़ते हैं उनकी दौड़ डिफरेंट है। देखिए वो भी दौड़ रहे हैं, ये भी दौड़ रहे हैं, वो दुनिया में दौड़ रहे हैं, ये आखरत के लिए दौड़ रहे हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने अपनी दुनिया बनाई उसने अपनी आखरत का जरूर नुकसान किया, और जिसने अपनी आखरत बनाई उसने अपनी दुनिया का कुछ ना कुछ जरूर नुकसान किया। आप एक ही मैदान में दौड़ सकते ना, ऐसा नहीं हो सकता आगे 24 आया ना आप दोनों के लिए दौड़ रहे, ऐसा नहीं हो सकता। या तो आप इधर दौड़ लगा लें या उधर लगा लें। अब इधर दौड़ दौड़ के हम दुनिया में दौड़ दौड़ के हम कहें भाई आखरत में जाके जी हमें भी उतना ही मिले जितना वो आखरत में दौड़ने वाले, आखरत के लिए दौड़ने वालों को, तो ये नहीं होना। ऐसे ही समझ लें जैसे एक ट्रैक है, उसके ऊपर आप देखते हैं ना लोग दौड़ रहे होते, फिनिश लाइन पे जब कोई पहुंचता है तो फिर वो जीत जाता है। अब कोई इस ट्रैक पे तो ना दौड़े, वो बाहर ही दौड़ना शुरू गया, वहां पे दौड़ दौड़ के आके फिर आके इनको कहे मैं भी जीत गया, तो वो मानेंगे आपको? वो कहते हैं इस ट्रैक पे जो दौड़ के आया ये ट्रैक था दौड़ने का, और ये ट्रैक आखरत का ट्रैक है, नेकियों का ट्रैक। अब ये बना लो, वो कर लो, इतना पैसा कर लो, इधर चले जाओ, उधर वेकेशन कर लो, ऐसे कर लो, ये पहन लो, वो कर लो, बस इसके अंदर ही डूबे पड़े हैं। ये भी एक दौड़ है, बाजारों की दौड़, मॉल्स की दौड़, दफ्तरों की दौड़, बिजनेस की दौड़, फिर अच्छे से अच्छा खाने पीने पहनने की दौड़, ये सारी दौड़े हैं। अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और ज्यादा बेहतर से बेहतर करने की दौड़, ये भी दौड़े हैं ना, लेकिन आप कहीं और ही दौड़ रहे हैं। और नेकियों में दौड़ने वाला डिफरेंट ट्रैक पे दौड़ रहा है। कयामत के दिन आप ये नहीं कह सकेंगे, मैं भी दौड़ दौड़ के ही तो आई हूं, मैं भी तो मेहनत करके आई हूं, मैंने भी बड़ी ही दौड़ लगाई, बड़ी भागी मैं, बड़ी भाग दौड़ में मैं लगी। किस चीज के लिए लग रहे? वो तो कुछ और ही चीज थी जो वहां पे रिक्वायर्ड ही नहीं है, मतलूब ही नहीं है। वहुम लहा साबिकून, और वो नेकियों में बढ़ आगे सबकत ले जाने वाले हैं। सबकत मींस के जैसे कोई मुकाबला हो रहा होता है ना, उसके अंदर कोई कहता है मैं सबकत ले जाऊं, जैसे हम जेवरों में कपड़ों में सबकत ले जाने की कोशिश करते हैं कि मेरा बेस्ट होना चाहिए, मेरा ब्रांड नेम ऐसा होना चाहिए कि मैं एक दफा बताऊं तो दूसरे को समझ आ जाए कि मैंने कितना महंगा कपड़ा खरीदा है और पहना है। वो भी सबकत है। ये है दुनिया में सबकत ले जाना, एक नेकियों में भी सबकत है कि कोई करे ना करे मैंने करना है, कोई आगे बढ़े ना बढ़े ये नेकी करने के लिए मैंने करनी है। हम इंतजार करते हैं लोग कर ले फिर हम करेंगे, वो इंतजार नहीं करते, वो कर लेते हैं, वो आगे बढ़ के कर लेते हैं, वो अपॉर्चुनिटी अवेल कर लेते हैं, लेकिन चांसेस हमेशा नहीं मिलते और ना मिलते रहेंगे। याद रखें, आप अगर सोचते हैं ना आपकी सारी जिंदगी आपको इसी तरह चांसेस मिलते रहेंगे नेकियां करने के, नहीं, हमेशा एक जितने चांसेस नहीं होते, कभी चांसेस कम होते हैं, कभी ज्यादा होते हैं। जब आपको जो चांस मिले ना, उसको हाथ से ना जाने दें। जैसे आप कोई कोई बड़ा नफे का सौदा होता है ना, हम कहते हैं ये डील हाथ से नहीं जानी चाहिए, ये तो मैंने लेके ही रहनी है, चाहे मुझे इसके लिए इतना भी पैसा देना पड़े, ये इतनी अच्छी डील है। तो नेकियां भी डील है, इनको डील समझे कि ये डील मेरे हाथ से क्यों चली गई, मुझे ये डील, मुझे चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़ी, मैं इस डील को हाथ से नहीं जाने दूंगी। ये होना चाहिए नेकी के मामले में हमारा रवैया, तब हम कुछ कर सकेंगे। और अगर ये रवैया, इतना कुछ तो मैं करती हूं, अब और क्या करूं, अब कल कर लूंगी, परसों कर लूंगी, अगर ये रवैया है ना, तो फिर इनमें नहीं शामिल हो सकते, ये तो दौड़ लगाए में, आपको भी दौड़ लगानी पड़ेगी भलाइयों में, नेकियों में, अल्लाह ताला की फरमा बरदारी में, गुनाहों से दूर होने में, और इसमें सबकत कि जितना दूसरा कर रहा है मैंने उससे ज्यादा आगे निकलना, अच्छा वो ये कर रहा है मैंने उससे भी ज्यादा करूंगी, ये नहीं कि मुतमईन होके बैठे रहे बस बाकी भी इतना इतना कर रहे हैं मैं भी इतना ही करूं, नहीं। साबिकून, अगर वहां साबिकून में शामिल होना है, हम चाहते हैं लेकिन अगर वहां होना है तो ये करना पड़ेगा। वला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अब इंसान कहता है अल्लाह मैं कैसे नेकियां करूं, हाय मैं कैसे करूं, मेरे ऊपर ये जिम्मेदारियां, मेरे ऊपर ये, अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ताला किसी की वुसअत से ज्यादा, जितनी उसके अंदर कैपेसिटी है ना, उससे ज्यादा किसी के ऊपर तकलीफ नहीं डालता। आपको जितनी इस्तात है आप उतनी कर लें, और उतनी आप कर सकती हैं। देखिए अगर आप बीमार हैं, आप नहीं रोजा रख सकते, अल्लाह ताला आपको नहीं कहता कि आप रोजा रखें, ये तो अल्लाह ताला ने, आप ऐसे करें मैं तो कर ही नहीं सकती, मैं तो कुछ भी नहीं, नहीं, आपकी जितनी वुसत है आप उतना ही करें ना, अल्लाह ताला उससे ज्यादा किसी के ऊपर नहीं बोझ डालता। उसको पता है कि मेरी बंदी इतना ही उठा सकती है, और ये भी समझ लें इससे कि जो हमारे ऊपर आता है वो उतना ही है, चाहे वो अल्लाह ताला के अहकामात हैं, चाहे वो कोई जिम्मेदारियां हैं, चाहे कोई गम परेशानी है, चाहे कोई प्रॉब्लम्स है, चाहे कोई जो शरीयत के अहकाम है, जो भी ये सब चीजें हैं ना, ये अल्लाह ताला ने हमारी जितनी बर्दाश्त है उनके मुताबिक हमें दी है। अहकामात सबको दिए ना, हम सब की बर्दाश्त है कि हम वो पूरे कर सकें। कोई ये नहीं कह सकता अल्लाह ताला ने तो इतना बोझ नहीं डाला तो इसलिए जो है ना मैं तो सोती रहूं फजर में और मैं उठूंगी नहीं, क्योंकि अल्लाह को पता है ना कि मुझे कितनी नींद आती है। और हाँ, हम स्कूल कॉलेज जाते हैं, इतनी गर्मी होती, इतना थक जाते हैं, स्पोर्ट्स भी ली हुई है, ये भी करना है, एग्जाम्स भी हो रहे हैं, और मैं रोजा नहीं रख सकती। अल्लाह ताला तो वो सबसे ज्यादा नहीं बोझ डालता, तो फिर हम रोजा छोड़ देते हैं। नहीं, जो शरीयत के अहकाम, जो फराइज है ना, वो सबके ऊपर हैं, इक्वल ही हैं। हाँ, जिसको अल्लाह ताला ने कोई शरई उजर दिया हुआ, वो उसकी वजह से उस चीज को छोड़ सकता है, जैसे रोजा बीमार के लिए छोड़ना, लेकिन उसके अलावा नहीं कि हम खुद ही से बना लें, हमारी तो इतनी ताकत ही नहीं है। इसी तरह जिम्मेदारियां, अब आपकी जिम्मेदारी डिफरेंट, किसी और की डिफरेंट, वो हर एक के थ्रेशोल्ड के मुताबिक, किसकी कितनी बर्दाश्त है उसके मुताबिक जिम्मेदार। इसी तरह गम भी, प्रॉब्लम भी। इसी वजह से जब कोई हमारे पर प्रॉब्लम आए जिंदगी में, तो ये सोचा करें कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल समझा ही होगा कि मैं ये बोझ उठा सकती हूँ, तो दिया ना। बीबी हाजरा को वहां पे बियाबान सहरा के अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फरमाया छोड़ आए, तो अल्लाह ताला ने उनको काबिल समझा ही था ना कि ये उठा लेंगी ये बोझ, तो उनको वहां पे भेजा। किसी और औरत को क्यों नहीं भेज दिया? सब मतलब है कि अल्लाह ताला जानता है मेरी कितनी कैपेसिटी है, कितनी कैपेबिलिटी है, कितना मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ। अल्लाह को पता है, वो कभी उससे ज्यादा नहीं बोझ डालता। वलदैना किताबु यंतिकु बिलहक, और हमारे पास एक किताब है जो हक के साथ बोलती है या बोलेगी। ये कौन सी किताब है? एक तो अल्लाह ताला के पास किताब है ना, लौहे महफूज, वो नहीं, यहाँ पे हमारी अपनी किताबों की बात हो रही है जो कयामत के दिन बोलेंगी, और वो है हमारा आमाल नामा जो लिखा जा रहा है। और उस दिन क्या होगा? वो दी अल किताबु फतर मुजरिमीना मुशफिकीना में माफी, वो तो उस दिन किताब रखी जाएगी, मुजरिम लोग डरते होंगे, कहेंगे या वही लतना माली हादल किताबी लाई वादिरो सवीरा तमला कबीरा तनिला सा, वो कहेंगे हाय हमारी कमबख्ती, ये कैसी किताब है? जैसे हम कहते हैं ना, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, ये किताब, इसके अंदर तो सारी चीजें लिखी हुई है, छोटी बड़ी हर चीज। उस दिन अल्लाह ताला फरमाया इकरा किताब, तू पढ़ अपनी किताब, तेरा ये तेरा तू अपना हिसाब लेने के लिए आज खुद ही काफी है, तेरी तो किताब ही बोल रही है कि तेरे क्या कच्चे छट्टे, छोटी से छोटी चीज। अब वो जो है ना, हम कहीं जा रहे थे, किसी ने कुछ मांग लिया, हमने कहा चलो ठीक है, हमने पर्स से कुछ पैसे निकाले और दे दिए, वो $1 था, $1 ही दिया था, कुछ ज्यादा बड़ी चीज नहीं था, हमने भी ऐसे ही बेपरवाही से दिया, वो भी उसमें लिखा हुआ है इतनी छोटी नेकी भी लिखी हुई और इतनी छोटी बुराई भी लिखी हुई है कि जब कोई नजर इधर से उधर भटकी और उसने क्या हराम चीज देखी, या दिल में कौन सा ख्याल आया था, किस वक्त कौन सी बेहयाई की बात उसके ऊपर नजर डाली थी, वो भी लिखी हुई, इतनी छोटी चीज। हम ला युज़लमून, और वो जुल्म नहीं किए जाएंगे, यानी किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं होगी उस दिन कि उसके ऊपर कोई गुनाह लाद दिए जाए ऐसी जो उसने किए भी नहीं, या उसकी नेकियों को कम कर दिया जाए, ऐसे नहीं होगा। बल कुलूबुहुम फी गमरतिन मिन हादा, बल्कि उनके दिल जो है ना वो गफलत में पड़े हुए इससे, किससे? एक तो ये पीछे बात किताब की हुई, तो किताब की तरफ ही इशारा हो सकता है कि इस किताब अपने आमाल नामे से ये गफलत में। और वाकई अल्लाह अकबर, हम भी हैं और हम अपने इर्द गिर्द भी देखें, सारी दुनिया गफलत में डूबी, फी गफलतिन, गफलत के अंदर, गमरा के अंदर, गमरा मैंने कहा ना जो ढांप ले, जो जैसे पानी ढांप लेता, तो गफलत भी इंसान को ऐसे ही ढांप लेती है। और फी अंदर, फी के मतलब होता है अंदर, उसके अंदर जैसे गर्क हो जाते हैं ना, कि कोई होश ही नहीं कि हमारी कोई किताब भी है, कुछ लिखा जा रहा है, कोई मैं जो पढ़ना पड़ेगा, ये मेरी किताब, मैं उस दिन देखूंगी, मुझे दिखाई जाएगी, बिल्कुल इस तरफ की कोई फिक्र नहीं। जैसे हमने ना बहुत चीजों को, आप नोट करें, हमने इजी लिया हुआ, इतना इजी लिया हुआ ना हर चीज को, आखरत से मुतल्लिक नहीं, यहां से मुतल्लिक नहीं, इजी लिया हुआ। अगर 6 महीने बाद भी कोई शादी पे मैंने जाना है ना, तो मुझे अभी से बड़ी फिक्र हो जाती है, मैं उस वक्त पहनूंगी क्या, मैचिंग मेरे पास ज्वेलरी है कि नहीं, और कपड़े बनवाने और फिर ज्वेलरी के मैचिंग करने के लिए मुझे आखिर सारी फिक्र होती है कि मैं भाई उस दिन अच्छी लगूं, लेकिन आखरत की मुझे ऐसी फिक्र है, पता नहीं उस शादी पे जाने से पहले ही मैं आखरत के वहां पे खड़ी हो जाऊं अल्लाह के हजूर, मुझे क्या पता उस अदालत में मुझे खड़ा होना पड़े। यार मुझे उस किताब कोई बिल्कुल लाइट उसमें मामला है, बाकी सारे मामला मेरे लिए बड़े बड़े सब बड़े बड़े हैं, उनके ऊपर मैं उनको लाइट नहीं ले सकती। ये कैसी बात है, हम किधर गुम है ना। और सब ये नहीं कि आपकी बात हो रही है या मेरी बात हो रही है, हर तरफ देखें गफलत गफलत गफलत। ऐसे लगता है गफलत में हम बिल्कुल कवर्ड हैं, इधर टाइम वेस्ट उधर टाइम वेस्ट, इधर बैठ गए उधर देख लिया, उधर सर्च कर लिया, उधर फोन पे बातें कर ली, उधर टेक्स्टिंग में बड़े हो गए। गफलत ऐसी के बस जिसे हम बाहर ही नहीं आने का नाम लेते, इतनी गफलत। याद ही नहीं कि हम कहीं जा रहे हैं और हमें वहां पहुंचना है और अल्लाह को जवाब देना है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला उनके बारे में फरमाता है मुशरिकीन के कि ये तो देखो इनकी किताब लिखी जा रही है लेकिन ये गफलत के अंदर डूबे हैं। मैं तो सोचती हूँ वो तो डूबे ही थे, आज हम ईमान रख के कयामत के ऊपर फिर भी डूबे। जो जिधर है ना वो उधर ही डूबा हुआ, और जो जहालत के अंदर है वो अपनी जहालत को ही बहुत बड़ी चीज समझता है, वो इस पे ही खुश है, इतना खुश है जैसे हमने पहले कहा ना कि जो जिसमें वो उसमें खुश है, वो इतना खुश है कि चलो अच्छा है मैं जाहिल हूँ, शुक्र है मुझे तो ये चीजें पता ही नहीं है, मैं तो कल जाके कह दूंगी कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, वो उसमें खुश है। जो थोड़ा बहुत कर रहा है ना वो इसमें खुश है, नहीं देखो ना दूसरों से ज्यादा तो मैं कर ही रही हूं ना, और क्या करूं इससे ज्यादा, वो इसमें खुश है। हर कोई बड़े मजे में है और मुतमईन है, मुतमईन बिल्कुल, कोई कोई फिक्र की बात नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं, आखरत की बात तो टेंशन की बात है ही नहीं। हाँ यहाँ की बहुत टेंशन की बातें हैं, जॉब ना चली जाए, महंगाई हो गई तो क्या होगा, इस बच्ची के शादी होगी तो उसके फिर क्या दूंगी, फलाने से मिलने मिलाना है तो क्या होगा, इसमें यानी इन चीजों को हमने कितना बड़ा बनाया है, और वहां के मामला बिल्कुल छोटे छोटे लगते हैं। यही शैतान ने जो कहा था ना, मैं आगे से भी आऊंगा पीछे से भी आऊंगा दाएं से भी बाएं से भी, वो आखरत के मामला को छोटा करके दिखाता है कि बिल्कुल लाइट लो उनको, सो स्ट्रेस की बात है ही नहीं, उस स्ट्रेस की क्या बात है, दिख ही जाएगी वहां जाएंगे कुछ बन ही जाएगा, लेकिन यहाँ के मामला जो बिल्कुल बेकार है। अब सोचे 1 साल पहले या 2 साल पहले या 4 महीने पहले हम किसी जगह गए, क्या पहन के गए, वहां पे क्या खाया, वहां हमारे मैचिंग थे कपड़े के नहीं ज्वेलरी के साथ, या हमने क्या किया था, कुछ भी याद नहीं होता। हमने कितनी मूवीज देखी, कितने हमने गेम्स खेली, कितनी हम क्या, आजकल तो फोनों पे भी लोग गेम लेके बैठे होते, उसमें भी गेमें खेलते रहते हैं, वक्त का जिया। उतनी देर में ही आप कुरान की 2 आयतें पढ़ सकते हो, और एक एक हर्फ पे आपको नेकियां मिल सकती हैं, लेकिन वो नहीं निकालना, उसी फोन पे कुरान भी है वहां पे नहीं जाना, ऐसे ही इंटरनेट पे सर्चिंग कर रहे हैं, क्या उससे क्या हासिल होगा। अगर हम अपने कुरान को उस तरह निकालें, आई विश के ऐसा हमारे साथ हो कि हम कुरान को ऐसे निकालें जैसे हम फोन निकालते हैं, जल्दी से फोन को देखते हैं ना कितना टेक्स्ट आया, 2 4 उसमें से टेक्स्ट पढ़ लेते हैं, चलो पढ़ा गया, उस तरह हम कुरान की आयतें क्यों नहीं पढ़ना शुरू कर देते, जल्दी से हमने 1 आयत पढ़ ली, कोई बात नहीं, एक को मामूली ना समझे, नहीं नहीं जब तक पूरे सिपारे की नहीं हमारे पास फुर्सत होगी तब तक हमने बैठना है, नहीं तो पढ़ना तो पूरा रुकू पढ़ना, नहीं नहीं एक एक आयत भी, एक एक आयत भी पढ़ेंगे ये भी ढेर लग जाएंगे। ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन, छोटे से छोटा भी उसके अंदर होगा अमल, और ये तो कोई छोटा भी नहीं है जिसका एक एक हर्फ 10 10 नेकियां आपको दिला दे, वो कोई छोटी बात है। अल्लाह अकबर। लेकिन हमारा सारा वक्त किन चीजों में गुजर रहा है, किधर जा रहा है, किधर बहता जा रहा है, ऐसे जैसे बर्फ पिघल रही होती इतनी तेजी से, तो पहले नहीं बर्फ इतनी तेजी से पिघला करती थी जितनी आप पिघल रही, वाकई हमारी जिंदगियां इतनी तेज भाग रही हैं, इतनी तेजी से हमारा ये वक्त गुजरे चला जा रहा है कि जो हम खुद फील कर सकते हैं, एक बच्चे को भी पूछ ले वो भी आपको बताता है कि अब फिर वीकेंड आ गया, अब फिर वीकेंड आ गया, ऐसी तेजी से साल महीने दिन का तो पता ही नहीं चलता, फिर भी हमें परवाह नहीं। हम कहां युसारे उना फिल खैरात कैसे करें अगर हमने अपने आप को दूसरी चीजों में कंज्यूम किया हुआ, तो नेकियों में कैसे भागेंगे। और जिंदगी जितनी हमारी तेजी से जा रही है ना, उतनी ज्यादा हमें फिक्र होनी चाहिए कि हम नेकियां जल्दी कर लें। बल्कि पुराने लोगों की तो जिंदगियां भी जरा लंबी होती थी और उनके वक्त में भी बरकत हुआ करती थी, हमारे वक्त से भी बरकत खत्म हो गई और जिंदगियां भी शॉर्ट हो गई। मैं आपको बताया था पहले, शायद आपके साथ नहीं बात हुई, कि अल्लाह ताला ने कुराने पाक में फरमाया ना कि मैंने तुम्हारे लिए नजीर भेजा, डराने वाला। तो मुफसरीन ने उसकी तफसीर इतनी खूबसूरत की, सुबहान अल्लाह, मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि उसका मतलब है रसूल भी है और उसका मतलब ये भी है। बाज मुफसरीन ने कहा कि ये जो तुम्हारे बाल सफेद हो जाते हैं, और बाज ने कहा कि ये जो जब तुम्हारे कोई ग्रैंड चाइल्ड हो जाए तो ये भी नजीर है। तो बाल सफेद होना, और फिर उसके बाद बाज ने कहा जब तुम्हारे पर बीमारियां आना शुरू हो जाएं तो वो भी नजीर है। तो ये तो नजीर हमारे पास आ रहे हैं, वार्निंग देने वाले आ रहे हैं, हम वार्निंग नहीं सुन रहे। वला हम आमालुन मिन दूनी दालिका हम लहा आमिलून, और इनके और भी बहुत से बुरे आमाल हैं जो ये करने वाले हैं, जो ये करते हैं ना, और जो बाज तो जिक्र कर दी है अल्लाह ताला ने, बहुत सारे और आमाल भी हैं जो ये करते हैं और ये गफलत में पड़े हुए, और ये नहीं सोचते ये अपनी किताब में क्या लिख रहे हैं, अपने आमाल नामे को और स्याह करते चले जा रहे हैं बुराइयां कर करके। हत्ता इज़ा अख़ज़ना मुतरफ़ीहिम बिल अज़ाब इज़ा हुम यजारून, यहाँ तक कि जब हम पकड़ते हैं ना खुशहाल लोगों को अजाब के साथ, अजाब शुरू खुशहाल लोगों से ही होता है, उनकी ही उल्टे काम फिर जाहिर है सारे मुआशरे में फैल जाते हैं, सभी उनके पीछे लग रहे होते हैं, जैसे आज हम भी हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, आज भी मुतरफीन के पीछे ही चला जाता है, जितना मर्जी हम कह लेंगे आज हम एडवांस दौर में हैं लेकिन सब मुतरफीन के पीछे चलते हैं, एलीट क्लास को फॉलो करते हैं। तो जब अजाब आता है ना, तब वो क्या करते हैं, बेकरार हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। और ये ना, ये जैसे ज्वार होता है इस तरह से ये यज आरून है, घबराहट के वक्त आवाजें निकालना, चीखना चिल्लाना और दुआइयां देना, और ऐसे उस वक्त उनको याद आता है, उस वक्त कहते हैं इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, हाय हम ही जालिम थे, हाय हमने ही गलत किया। तो अल्लाह ताला फरमाता है ला तजारुल यौम, आज ना चिल्लाओ, आज ना दुहाइयाँ दो, इन्नकुम मिन्ना ला तुनसरून, बेशक तुम हमसे ना मदद दिए जाओगे। अब ये अजाब कौन सा है, बाज कहते हैं दुनिया का भी अजाब हो सकता है, बाज कहते हैं आखरत का अजाब है, जिसमें वहां पे उनको कहा जाएगा आज चिल्लाने की कोई फायदा नहीं है, कोई फरियादें करने का फायदा नहीं है, कोई पशेमानियों का फायदा नहीं, कोई हसरतों का फायदा नहीं, कोई रोने का फायदा नहीं। कयामत का नक्शा तो ऐसा ही होगा ना, ये लोग चिल्लाएंगे, रोएंगे, हसरतें करेंगे, इससे बड़ी क्या हसरत हो सकती कि इंसान कहे कि उफ मेरे पास टाइम था और मैंने नहीं किया, मैंने क्यों नहीं कोई नेकी की, मेरे पास टाइम था। कितनी बड़ी, जस्ट इमेजिन, तो इमेजिन करके भी ना रूह कांप जाती कि अगर मैं वहां पे खड़ी हुई और मैं सोच रही हूँ हाय मेरी, मुझे तो इतने साल मिले थे, कितने घंटे जहन में आए, कितने दिन जहन में आए, मेरे पास टाइम होता था और मैं निकाल भी सकती थी, मैंने क्यों नहीं कुछ किया। आज यहाँ पे टाइम भी किसी को हो जाता है ना, मिल जाता है अगर टाइम, वो कहते हैं चलो फरागत मिल गई है, वो उसका ज़हन ये नहीं जाता कि मैं कोई नेकियों में अपने आप को लगाऊं, मैं अपने दीन में बेहतरी करूं, मैं अपनी आखरत संवारने के लिए कुछ करूं। वो क्या कहते हैं चलो फिर मैं कोई जॉब ही कर लेती हूँ, अब मेरे पास टाइम था तो मैंने जॉब शुरू कर दी। अल्लाह हू अकबर, वैसे आपके पास टाइम ही नहीं होता, और टाइम मिल ही जाए तो फिर आप जॉब स्टार्ट कर देते, पहले भी तो जॉब के बगैर रह रहे थे ना, लेकिन अब आपने जॉब इसलिए स्टार्ट की क्योंकि अब आपके पास टाइम हो गया। ये ना आपकी कभी ये सोच नहीं आई कि मेरे पास टाइम हुआ है तो ये तो बड़ी नेमत है, अब मैं राइट एंड लेफ्ट नेकियां करूं, भागू नेकियों में। अल्लाह हू अकबर, देख ले हमारी सोच। तब भी ये दुनिया ही याद रहती है, तब भी आखिरत नहीं याद रहती, टाइम मिल भी जाए। और हम सब ऐसे ही हैं। कद कहनत आयाती तुतला अलैकुम, तहकीक पढ़ी जाती थी मेरी आयात तुम्हारे ऊपर। फकून तुम्हारा अकाबिकुम तन को तन की सुन, और तुम क्या करते थे उनके ऊपर, तुम एड़ियों के बल फिर जाते थे, सुनना ही नहीं चाहते थे, लौट जाते थे, भाग जाते थे, फिर जाते थे। उनको उस दिन कहा जाएगा कि ऐसे ना कहो, अब रोते किस बात पे हो, ये तो नहीं कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं था, तुम पे आयतें पढ़ी जाती थी, तुम्हें समझ थी, तुम्हें पता था, सब मालूम था, लेकिन तुम सुनते कहाँ थे, तुम भाग जाते थे आयतों को सुन के। क्यों क्यों इंसान यू टर्न ले लेता है, क्यों इंसान भागता है? इतना मुझे दुख होता है ना बाज दफा। अल्लाह अकबर, बहुत शदीद दुख की बात लगती है मुझे जब किसी ने बताया कि अगर लोगों को कह देना कि दर्स है तो वो आते नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि दुआ है और लंच है तो फिर आ जाती हैं खवातीन। दुआ है ना तो थोड़ी देर की होगी ना दुआ, तो चलो दुआ भी हो जाएगी लेकिन 10 मिनट की हो जाएगी ज्यादा से ज्यादा। दर्स वगैरह हमने नहीं सुनने, कहीं हमें अपनी जैसा ही ना बना ले, आए हम नहीं इनके जैसे होना चाहते, और हमें कहेंगे साइन करो, क्लास लो, कुरान की तरफ आ जाओ, तो नहीं 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 ये नहीं हम करना चाहते। और अगर उस वक्त सुन ही लिया मुश्किल से, तो उसके बाद रिस्पॉन्ड ही नहीं कभी किया, कभी फोन ही नहीं उठाया कि ये ना हो कि हमें दोबारा बुला लें इस तरफ। अल्लाह अकबर, हम कैसे भागते हैं ना इस कुरान से, इतनी बड़ी ये नेमत है अल्लाह की, और हमें लगता है कि हाय हमें तो पता नहीं जैसे गले में फंदा पड़ गया, या हमें फंस जाएंगे हम इसके अंदर आके। अल्लाह अकबर, तो जब तुम्हारे ऊपर आयतें पढ़ी जाती थी तो तुम अपनी एड़ियों के बल फिर जाया करते थे, तुम्हारा ये हाल था। तो यानी ये उनके ऊपर फर्दे जुर्म आयद की जा रही है ना कि आयतें तो थी तुम्हारे पास, इसका मतलब यहां से आपको क्या पता चलता है कि इसका मतलब ये आयतों को सुन लेते, इनको समझ लेते, जैसे वकालू लव कुन्ना नस्मा हुआ नाखिलु मा कुन्ना फी असहाबे साइन, हर रात हम ये पढ़ते हैं सूरह मुल्क, काश हम सुन लेते, काश हम समझ लेते ना आयतों को, तो आज हम जहन्नुम में ना पड़े होते, आग में ना होते हम। इसका मतलब ये आयतें उनकी जिंदगियों को चेंज कर सकती थी, ये दिस वॉज द की, ये चीज थी जो इनको सीधे रास्ते पे ला सकती थी, लेकिन सुनते तो फिर था ना, सुनना ही नहीं, पढ़ी जाती थी भाग जाते थे, सुनना चाहते ही नहीं थे। क्यों नहीं सुनना चाहते थे, क्या प्रॉब्लम है? इसलिए कि हमारी जिंदगी इतनी मजे की गुजर रही है ना, हम ये गफलत की नींद से जागना नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि हमारा ये लाइफ स्टाइल डिस्टर्ब हो, हम नहीं चाहते कि हमें ये आखरत याद कराई जाए, पे तो हमारा यहाँ का मजा ही खराब हो जाएगा। ये डिप्रेसिव बातें इनको छोड़ो, अल्लाह ताला उस दिन फरमाएगा पढ़ी जाती थी तहकीक, यकीनन पढ़ी जाती थी तुम्हारे पर, तुम्हारे घरों में कुरान थे, तुम कुरान कहीं ना कहीं तुम्हारे सामने आता था, लेकिन तुम उससे टर्न अवे भागते थे, उससे मुस्तकबिरीना तकब्बुर करते हैं, हम बड़ी चीजें, हमारी अकलें बड़ी हैं, हमारे पास इतनी डिग्रियां हैं, हम सब कुछ जानते हैं, हमें क्या बताएंगे आप। कई लोग गुस्से में आ जाते हैं, कहते हैं हम मुसलमान नहीं हैं, हमें सब पता है, आपने हमें क्या बताना है। तकब्बुर, यानी इतनी अपने आप को बड़ा समझते हैं कि हमें सब कुछ आता है, हमें कुरान की जरूरत ही नहीं है, कुरान की जरूरत नहीं है आपको, तो अल्लाह ताला ने किसके लिए ये नाजिल फरमाया? हम तो सारे बॉर्न बाय बर्थ ही हम सब जानते हैं। ये तकब्बुर की नफसियात है कि इंसान कहे मुझे सब आता है, हमें सब पता है, हमें कुछ ना बताओ। मुस्तकबीन भी सामिरन तहजुरून, ये इसके साथ तकब्बुर करते हैं और रातों को अफसाना गोई करते, तहजुरून हिजर से है, हा जीम रा से, इसके दो माने हैं, एक अगर वो वाला माना लिया जाए जो हिजरत वाला होता है, हिजर वो तो छोड़ने का माना होता है ना कि वो इसको छोड़ देते हैं, अब यानी कुरान पाक को छोड़ देते हैं, इसकी तरफ नहीं आते। और एक माना इसका हुजर से है, हा के ऊपर पेश के साथ है, उसका मतलब होता है कि फजूल बातें करना, बेहुदा बातें करना, जिसको कहते हैं फोश गोई करना, बेतुकी बातें हांकना, ये इसका माना है। तो दोनों माने ही हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा हाके पर पेश के साथ उलमा ने इसका बताया कि ये माना है, क्योंकि वो लोग इसके ऊपर ऐसी ही बातें करते थे कुरान के ऊपर, और अल्लाह ताला ने फरमाया ये तकब्बुर करते हुए ये ऐसे करते हैं, यानी इन लोगों के क्या था कि, अच्छा सामिरन से भी आपको बताती हूँ ना, ताकि आपको ये भी बात समझ आ जाए, कि सीन मीम रॉ से है, इसका मतलब होता है चांदनी रात। उसमें ये लोग क्या करते थे, सामिर कहते हैं किस्सा गो को, समीर भी उसको जो अफसाना गोई करते हैं, किस्से सुनाते हैं, तो ये लोग क्या करते थे, काबा के अहाते में बैठ के, सेहन में बैठ के किस्सा गोइयां करते थे, बेतुकी बातें, गपशप करना, ये इस तरह की चीजें करते थे, और रात रात तक बैठे रहते थे, अतः कई दफा सुबह भी हो जाती थी, यानी इतनी रात तक बैठ के उनकी बातें ही नहीं खत्म होती थी, जैसे कि आज भी होता है। तो उस चीज को बताया गया कि यह कुरान के ऊपर बातें लगाते हैं, इसका मजाक करते हैं, तकबर करते हुए रातों को वहां बैठ के प्लानिंग करते हैं कि हम कुरान का कैसे जवाब देंगे और कैसे कहेंगे इसको ऊपर बातें, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या इस इन आयतों के जवाब में कहेंगे, ये बातें करते थे वहां बैठ के रात के वक्त। और रात के वक्त आप इनकी इस बात को खास तौर पे कंडेम किया गया, क्योंकि रात के वक्त इंसान अक्सर चूंकि फारिग होता है तो इसी तरह के मशगलों में लग जाता है, अरब अजम में ये कदीम से चला आ रहा है, और इस तरह और भी बहुत सी बेकार और फजूल चीजें रात के वक्त होती हैं, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रस्म को मिटाने के लिए ईशा से पहले सोने को और ईशा के बाद फजूल किस्सा गोई करने को मना फरमाया, और हिकमत यही थी कि ईशा की नमाज पे इंसान के आमाल जो है ना वो खत्म हो रहे हैं, दिन खत्म हो गया ना, आमाल यहाँ पे खत्म हो रहे हैं, अब इसके बाद इंसान सो जाए एक नेकी करके, यानी ईशा की नमाज पढ़ के, और ये इसका आखिरी अमल हो, क्या पता रात में सोते सोते मौत आ जाए तो आखिरी अमल ईशा की नमाज हो, लेकिन अगर उसके बाद फजूल गोइयों में लग गए बेकार, अब बस बैठ के आप देख लें रातों को क्या करते हैं, अब रात को मूवी लगा लो, चलो जी मूवी के लिए बैठ गए, वो जो मूवी नहीं है तो वो गपशप करने में बैठ गए, उसके बाद भी इसके अलावा भी जितनी बुराइयों की चीजें आप देख लें, थिएटर्स में जाना, सिनेमा में जाना, और ये जो जितने ये नाइट क्लब्स हैं, और ये जहां पे भी लोग जाते हैं, ये बार्स हैं, और ये सारी आप चीजें ये रातों को खुलती हैं और रात को ही इनके अंदर रौनकें होती हैं, सारी ये बुराई की चीजें, इनसे मना करने के लिए फरमाया ईशा के बाद ही सो जाओ। और इनका तो ये था ना मशगला वहां पे बैठ के हंसी मजाक, इस चीज को मजाक बनाना, इसके ऊपर कमेंट्स करने और ऐसी बातें बनाना, ये करते थे, और किस्सा गोइयां करना, कुरान तो इसका अल्टरनेट है ऐसी सारी गंदगियों का। रात को आप जाग सकते हैं कुरान पढ़ने के लिए, तहज्जुद पढ़ने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए, कोई अच्छी बात बयान करने के लिए, किसी लेक्चर के लिए, या आपके मेहमान आए हैं तो उनके लिए, मगर ये गंदे काम, इनकी तरफ जाने के लिए रातों को बैठना, ये उनका भी काम था और आज भी है, यही काम पकड़ा हुआ, पूरी पूरी रात बैठे रहते हैं और सुबह को जाके सोते हैं। हजरत उमर इस चीज से बहुत मना किया करते थे, जब किसी को ईशा के बाद फजूल किस्सों में मशगूल देखते थे तो वार्निंग देते थे, बाज को सजा भी देते थे, फरमाते थे जल्दी जाके सो, शायद आखिरी रात में तुम्हें तहज्जुद की तौफीक मिल जाए, तो जिसने तहज्जुद पढ़नी है उसको तो जल्दी सोना पड़ता है, और फजर भी, इवन बाज की तो फजर भी निकल जाती है अगर रात को इस तरह पूरी पूरी रात बैठ के बातें कर रहे, और बिल्कुल बेकार वो वक्त गुजार रहे। तो ये जो सारी चीजें, इनसे इंसान को हटा के, और ये बताया गया कि ये उनका काम होता था, वो ये करते थे रात को बैठ के। सामिरन है ही रात का, रात को किसा गोया करता। अफलम यदब्बरुल कौल, क्या उन्होंने गौर नहीं किया इस कलाम के ऊपर, इस कुरान के ऊपर? अब देखिए कुरान की हक्कानियत को ये अगली 3-4 आयतों के अंदर बताया जा रहा है कि तुम सोचते क्यों नहीं हो, गौर और फिक्र नहीं करते। अम जाओ मालम यति आबाअहुमुल अव्वलीन, कि इनके पास आया है वो जो इनके आबाओ इजदाद के पास नहीं आया था। यानी इनके आबाओ इजदाद के पास ऐसा कलाम नहीं आया था, इनको तो अल्लाह ने एक नेमत दे दी, ये कोई गौर नहीं करते इस पर। ये कहते हैं हमारे आबाओ इजदाद के ऊपर तो नहीं ऐसी बातें आई, तो हमने तो माननी नहीं। तो ये तो एक नेमत है, ये तो इनाम है अल्लाह का जो तुम्हारे पास आया, क्या वो इस पे नहीं गौर करते? अब देखिए ये गौर करने को कहा जा रहा है, मगर कोई कुरान खोलेगा ये बात सुनेगा तो गौर करेगा ना। जो कुरान ही ना कभी खोले ना इसको समझे, उनको क्या पता। अल्लाह ताला ने तो फरमाया इस कुरान में गौर और फिक्र करो, क्या इनके दिलों पे ताले पड़े हुए हैं ये गौर और फिक्र नहीं करते? सूरह मोहम्मद में फरमाया अम लम यारिफू रसूलहुम फहुम लहू मुनकिरून, या ये क्या बात है कि ये अपने इस रसूल को पहचानते नहीं है इस वजह से ये इनकार कर रहे हैं? यहाँ तो ये होना कि कोई अनजान आदमी इनके अंदर आया है और उसने आके इनको बातें सुनाई हैं बताई हैं, तो ये सोच रहे हैं कि हम इसको तो जानते ही नहीं और इस वजह से वो इसका इनकार करते हैं, वो तो अलग बात है। लेकिन ये तो नबी इनमें पैदा हुए पले बड़े, ये उनको ही सादिक और अमीन कहते थे तो फिर भी इनकार करते। यानी रसूल की हक्कानियत इनके सामने है, ये खुद अपनी जुबान से इसका इकरार करते थे। हाँ बाहर से कोई आता तो हाँ ये कह सकते थे कि हम तो इसको नहीं जानते, और आज भी यकीन जाने जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की जात के बारे में किसी शक में है ना, तो उसको क्या चाहिए, वो उनकी जिंदगी को स्टडी करना शुरू करते हैं। यकीन करें जो उनकी जिंदगी है वो खुद इस बात का सबूत है कि वो अल्लाह के नबी है। इनके तो सामने थे ना, आज उनकी जिंदगी भी तो इसी तरह हमारे सामने प्रिजर्व है, तो वो जिंदगी को लाइफ को रीड कर लेना, स्टडी करें, आपको खुद पता चल जाएगा कि ये कोई आम आदमी नहीं है, ये अल्लाह ताला का रसूल है। हाँ आप अगर तासुब हटा दें तो सारे बायसेस हटा के साफ जहन करके पढ़ेंगे आप वाकई, और इसी तरह ये कुरान, कुरान में तदब्बर करो वाकई, आप कुरान में अगर तदब्बर करते हैं ना, ये खुद साबित करता है कि ये अल्लाह का कुरान, वो कुरान ही क्या जो अपने आप को साबित ना कर सके, ये साबित करता है ये अल्लाह का कलाम, किसी को बताने की भी जरूरत नहीं। हम यकूलूना बिही जिन्ना, या ये कहते हैं कि इसको जुनून लाहिक है, कभी जुनूनी कहते थे, कभी साहिर कहते थे, कभी कुछ कहते थे, बल जाअहुम बिल हक व अक्सरहुम लिल हक के कह रहे हूं, ये तो उनके पास हक लेकर आए। ये कहते हैं ये मजनून है, तो मजनून क्या ऐसा कलाम लेकर आ सकता है? ये तो हक लेकर आया, खुद गौर करके देख लो वो क्या लेकर आया, गौर करोगे तो पता चलेगा कि ये तो ऐसा कलाम तो कोई मजनून इंसान कह ही नहीं सकता। लेकिन असल प्रॉब्लम है ये नहीं है कि इनको हक का नहीं पता चलता, असल प्रॉब्लम ये इनको हक पसंद ही नहीं है, इसको पसंद ही नहीं करते, ये चाहते ही नहीं है इसको, अपनी जिंदगियां क्यों डिस्टर्ब करें ना, ये हक आ गया तो जिंदगी बदलनी पड़ेगी, जिंदगी तो हमने नहीं बदलनी, ये इसको नहीं पसंद करते। अल्लाह अकबर। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो 40 साल इनमें रहे, उस वक्त तो जुनूनी नहीं कहा, एकदम जुनूनी कहना शुरू कर दिया। वला वित्तबाल हक, और अगर पैरवी करता हक किस चीज की, अहवा इनकी ख्वाहिशात की, ला फसदत السماوات والارض ومن فيهن, ये तो चाहते हैं ना कि हक इनकी ख्वाहिशात के पीछे चले, जैसे हम चाहते हैं वैसी बात ये कुरान करें। बाकी अक्सरियत जो है आप देखें हक को ये चाहती है, ये हक, ये कुरान, ये अल्लाह ताला का दीन, ये उसका पैगाम, ये हम जैसे चाहते हैं ना उस तरह मोल्ड हो जाए, खुद बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं, ये करते हैं ना, ये कहते हैं कि कुरान बदल जाए, ये हम जैसे चाहते हैं हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक हो जाए। हम कहते हैं नजरों के अंदर वो होना चाहिए पर्दा, नजरों में पर्दा होता है, तो कुरान भी ये मान ले। हम कहते हैं कि ये भी चीज हलाल होनी चाहिए, तो कुरान ये भी मान ले। यानी कुरान, हम कुरान को इमाम ना बनाए, कुरान हमारा इमाम ना हो, हम इमाम बन जाए, हमें कुरान फॉलो करें, ये चाहते हैं असल में, क्योंकि इंसान अपनी ख्वाहिशात के पीछे चलना चाहता है ना। तो ये तो फसाद हो जाता सारी आसमान और जमीन में। और ये भी अगर यहूदी ईसाइयों की बात सुन ले वो तो, या मुशरिकीन की बात सुन ले, मुशरिकीन ने मक्का की बात सुन ले, तो उन्होंने तो कहना था कि एक खुदा नहीं, हमें तो तीन चार खुदा बना के दे दो। उनकी तो ये थी ना, तो सारे कुछ हर चीज क्रम्बल हो जाती, सारा निजाम ही खत्म हो जाता। बल आतई ना हम भी दिख रही, बल्कि हम तो लाए हैं इनके पास इनका ही जिक्र। इस कुरान में क्या है, इन्हीं का तो जिक्र है। ये देखिए हमारा जिक्र है ना, इसमें हमारी बातें हैं, हमें कैसे गाइडेंस मिलेगी, हमें सुकून कैसे मिलेगा, हमने दुनिया में कैसे रहना है, आखिरत में कामयाबी कैसे मिलेगी, घर कैसे चलाएंगे, मियां बीवी का ताल्लुक कैसा होना चाहिए, और किस तरह कौन सी चीज हलाल है कौन सी हराम है, डूज डोंट्स, और ये सारी चीजें, अल्लाह की पहचान, ये हमें सारा कराना, ये सारी चीजें हमारे फायदे से मुतालिक है, ये सारी चीजें हमारे से ही मुतल्लिक हैं, हमें ही नफा देती हैं, हमें ही कुछ सिखा रही हैं, इसमें तुम्हारा ही जिक्र है। फहम अन जिक्री मारे तू, तो ये अपने ही जिक्र से मुंह मोड़ने वाले, इनमें कोई जिन्नात की सोसाइटी की तो स्टोरीज नहीं है, इंसानों की बातें हैं ना। इंसान कैसे इस दुनिया के अंदर कामयाब जिंदगी गुजार सकता है, वो बातें हैं, तो वो इसी जिक्र से मुंह मोड़ते हैं। हम तसअलुहुम खर्जन फखराजु रब्बी का खैर, क्या तुम इनसे कोई फीस मांगते हो, कोई टैक्स मांगते हो कि ये दे नहीं सकते तो इसलिए ये भाग रहे हैं इससे, व्हाट्स द रीजन, अल्लाह ताला पूछ रहा है क्या बात है, ये अपने जिक्र से मुंह मोड़ते, कि तुम इनसे कुछ मांगते हो कि मुझे शोहरत दो, मुझे बड़ा मानो, मुझे सरदार बना लो, मुझे इतने पैसे दो, मुझे मेरी ये काम करो, मेरी ये करो, क्या मांगते हो तुम इनसे। फखराजु रब्बी का खैर, तो तुम्हारे रब का जो दिया हुआ है वो बेहतर है, वो खैरुर राज़िकीन, और वो बेहतरीन रिस्क देने वाला, वो है तुम्हें रिस्क देने वाला, तुम्हें इनसे कुछ नहीं। और किसी नबी ने किसी लोगों से अपनी कौमों से कुछ भी नहीं मांगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि हर भलाई अल्लाह के हाथ में और अल्लाह ही रिस्क देने वाला। तो जब तुम इनसे कुछ भी नहीं मांगते तो फिर इनको क्या प्रॉब्लम है, या तो कहेंगे हमें अफोर्ड नहीं कर सकते, हम दे नहीं सकते, तो फिर ये भाग रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला हमें स्पीचलेस कर देता है इन आयात के बाद, कि हम क्या बोल सकते हैं, क्या चीज है जो हमें भगाती है अल्लाह के जिक्र से। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। हम इंशाल्लाह तिलावत सुनेंगे।
ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. والذين هم بربهم لا يشركون. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين.